5 बजे आपको न्यूज सुनाएंगी शाजिया मलिक एंड आमिर.
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
अग तेजी नाल फैलदी है, यह यकीन बनाओ कि तुहाडे स्मोक अलार्म सही काम करदे हन. हर महीने अपने स्मोक अलार्म की जांच करो, बैटरियां नूं सलाना बदलो अते नवे अलार्म स्थापित करो जेकर ओह 10 साल तो वध पुराने हन. यह सुनिश्चित करो कि स्मोक अलार्म परिवार के सारे मैंबरां दीआं लोड़ां नूं पूरा करदे हन जिन्हां विच संवेदी जां शरीरिक असमर्था वाले भी शामिल हन. तैयार रहो अते सब तो महत्वपूर्ण चीजां दी रक्षा करो. होर जानकारी लई brampton-fire.com ते विजिट करो.
मैं हाँ जसराज सिंह हलन, कॉमन सेंस कंजरवेटिव. जस्टिन ट्रूडो अते जगमीत सिंह वालों लाया कार्बन टैक्स पहला ही तेल कीमता वधा रहा है. हुण कार्बन टैक्स नूं चौगुणा करना चाहुंदे ने. इस दे नाल ट्रकर्स दी कमाई होर कटेगी ते ग्रोसरी समेत महंगाई वधेगी. सिर्फ पीयर पॉलीएव अते कॉमन सेंस कंजरवेटिव लिबरल NDP कार्बन टैक्स खत्म करके ट्रकर्स अते सारे कैनेडियंस लई चीजां सस्तियां करनगे. पीयर पॉलीएव अते कॉमन सेंस कंजरवेटिव वालों इक सुनेहा.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता. CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन. अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें. CIBC.com/cashpickup पर जाएं. शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू. CIBC एम्बिशंस मेड रियल.
एक सुनेहा सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों, एक नेमन गुवांडी बनो अते साइडवॉक नूं साफ रखो. साइडवॉक नूं साफ रखना सारे ही निवासी अते अपाहज व्यक्ति, बुजुर्ग अते बच्चियां दी सुरक्षा लई बहुत जरूरी है. यह ध्यान रखो कि साधन दा कोई भाग साइडवॉक नूं ब्लॉक ना करे. साइडवॉक नूं हमेशा साफ रखो ताकि जो व्यक्ति स्ट्रोलर, वॉकर या व्हीलचेयर दी वरतों करदे हन उन्हां लई आसानी हो. ज्यादा जानकारी लई brampton.ca/bylaw ते जाओ.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773.
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है. रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार. एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको. ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो. इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, बिकॉज वी केयर.
कनाडा में 20,000 डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते और 32,000 नर्सें हैं जो हमारे अस्पतालों में काम करने से रोक दी गई हैं. हजारों दूसरे पेशावर लिबरल गेटकीपर्स की वजह से काम नहीं कर सकते. बस अब बहुत हुआ, कंजर्वेटिव लीडर्स पेयर पॉलिटिक ब्लू सी एग्जाम्स लेकर आएंगे ताकि नए आने वाले साबित कर सकें कि वो हमारे आला मेयारात पर पूरा उतरते हैं और मरीजों की मदद के लिए फौरी अपनी जॉब शुरू कर दें. ये कॉमन सेंस है. ये पैगाम पीए पॉलिक और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव किताबों से पेश किया गया.
रेडियो قریبین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ kerimsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
گرل ان دا ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وایا فون، عمران بھائی کو کال کریں۔
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383۔ گرل ان دا ہارٹ۔
ہمارا منصوبہ آنٹیریو کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ ہم روزانہ کے سفر کو کم کرنے کے لیے نئی سڑکوں اور ہائی ویز کی تعمیر کر رہے ہیں، اور بڑھتے ہوئے علاقوں کو منسلک کرنے کے لیے عوامی ٹرانزٹ کو وسعت دے رہے ہیں تاکہ آپ کا سفر تیز، محفوظ اور آسان ہو۔ مزید معلومات ontario.ca/builds پر موجود ہیں۔ اس کی ادائیگی آنٹیریو کی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے۔
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور آج بھی ہمارا سفر جناب آپ کے ساتھ تقریباً 6:30 بجے تک رہے گا۔ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد شازیہ ملک صاحبہ اپنی کھٹی میٹھی خبریں لے کر شامل ہو جائیں گی پروگرام میں، اور یہ سلسلہ پھر 6:30 بجے تک ایسے ہی آپ کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر۔ اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور کہیں آپ کو الیکٹرک تاریں اور ادھر ادھر کی تاریں آپ کو الجھا کر ہماری آواز صحیح نہیں پہنچا پا رہی ہے آپ تک، تو ایک نمبر ڈائل کیجئے 6478724900 پہ ڈائل کیجئے، کرسٹل کلیئر آواز آپ ہماری سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، تمام ہی ایڈورٹائزرز کے نمبر بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر مل جائے گی۔ ڈیٹیل خبریں بھی جو شاہد جی یہاں سناتی ہیں وہ آپ eawaz.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل eawaz ٹی وی اور ریڈیو کے نام سے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے، کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہمارا کانٹینٹ کیسا لگتا ہے۔ ہمارا ٹک ٹاک eawaz کے نام سے، جو بھی ٹک ٹاک یوزرز ہیں اس کو سرچ کیجئے eawaz کے نام سے، اس کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے اسمال کلپس یہاں بہت ہی اچھے زبردست انفارمیٹو کلپس آپ کو یہاں ٹک ٹاک پہ مل جائیں گے، اور اگر آپ نے فل یہی اسمال کلپس کو اگر آپ نے پورا شو دیکھنا ہے یا کلپس دیکھنے تو آپ ہمارا eawaz کے نام سے ریڈیو ٹی وی کے واسطے یوٹیوب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک بھی ہو گیا eawaz کے نام سے جناب، اور یوٹیوب چینل ہو گیا eawaz ٹی وی ریڈیو کے حساب سے eawaz ٹی وی، تمام ہی آئی پی ٹی وی باکسز پر موجود ہے۔ اردو یا پاکستانی کیٹیگریز میں آپ جا کے اس کو سرچ کر لیں۔ آئی نو 5-6 ہزار سے زیادہ ہی چینل آئی پی ٹی ویز پر، مختلف آئی پی ٹی ویز کے الگ الگ نمبر ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک بار eawaz کے نام سے سرچ کر لیں، اور آپ کے ریموٹ میں ایک یلو بٹن دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ پریس کریں گے وہ آپ کے فیورٹ میں ایڈ ہو جائے گا۔ اب آپ کو eawaz ٹی وی بار بار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یاد رکھنا ہے نام eawaz، الیکٹرانک eawaz eawaz کے نام سے۔ چلیں جناب، جیسے کہ شہر میں آج کل وہ ہو رہا ہے کہ سجاد علی صاحب آ رہے ہیں جناب، بہت سے لوگ فین ہیں سجاد علی کے، پسند کرتے ہیں، اور اسی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے مو شیخ صاحب اور شیراز حسین آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سجاد علی ٹور کینیڈا 2024۔ یہ 26 اکتوبر سیٹرڈے کو ہونے جا رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ میٹنگ ہاؤس اوکول میں، اور ٹکٹ آپ بائی کر سکتے ہیں eventbrite.ca سے آپ سجاد علی کانسرٹ کی، کینیڈا ٹور کی ٹکٹس بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اسپانسرشپس یا آپ نے کوئی اور انفارمیشن لینی ہے تو مو شیخ صاحب کو کال کر سکتے ہیں 416-818-1184 مو شیخ صاحب کا نمبر ہے۔ ویسے ابھی ٹی وی کو موٹر پہ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سب مو شیخ صاحب، تو اگر آپ سرچ بھی کر لیں گے تو آپ کو ان کا ایڈریس اور نمبر بآسانی مل جائے گا۔
अच्छा जनाब, शादियों का सीजन जैसे मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूँ ऑन हो चुका है, लोग कपड़े भी ढूंढ रहे हैं, ज्वेलरी भी देख रहे हैं और शादी हॉल भी ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ज्वेलर्स के पास लेकर चलते हैं जनाब, पायल ज्वेलर्स पर, जहां आपको असलम भाई मिलेंगे। और आपको मालूम है असलम भाई ने तो एक लकी ड्रॉ भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर आप वहां किसी भी किस्म की यानी $100 से लेकर जो भी आपकी पसंद वहां आपको कुछ चीज आती है, ज्वेलरी आप खरीदते हैं, तो आप एक लकी ड्रॉ में वहां शामिल हो सकेंगे पायल ज्वेलर्स पे। और 31 अक्टूबर दिवाली के दिन ये अनाउंसमेंट लकी ड्रॉ की असलम भाई पायल ज्वेलर्स की करेंगे। पायल ज्वेलर्स का एड्रेस 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन में, और इनका नंबर है 9057907879 पायल ज्वेलर्स का नंबर है, आप जाइए अगर आप ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। चलें जी, अब ज्वेलरी भी आपको दिला दी मैंने, अब आपको ले चलता हूं आपका शादी हॉल। जनाब आप चांदनी हॉल्स का पर जरूर विजिट कीजिए, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, यहां 1400 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी भी है। अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई एग्जीबिशन करा रहे हैं या आपकी कोई सेलिब्रेशन है, जैसे मैंने कहा कि अगर शादियां तो सीजन आपके हैं, घर में कोई शादी है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो एक बार जरूर उनको मशवरा दें कि चांदनी हॉल्स का विजिट करें। इनका एड्रेस है 2935 ड्रू रोड मिसिसागा, और इनका नंबर है 9054588888 इनका नंबर है, और इनकी वेबसाइट है chandnivictoria.ca पर भी आप विजिट कर सकते हैं और उनकी तमाम ही डिटेल्स वहां मिल जाएगी। जनाब एक 770 रेडियो और ई आवाज टीवी की तरफ से जो है हमारी, आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट है, हम एक लकी ड्रॉ, ये नेक्स्ट ईयर इसका ड्रॉ में नाम निकलेगा, उमरे के लिए हम जो है वो टिकट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर। अगर आप समझते हैं कि आप 55 साल की ओल्ड है एज आपकी और आपने कभी भी उमरा अदा नहीं किया, तो जनाब ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि साजो आवाज और ई आवाज टीवी यानी रेडियो 770 साजो आवाज और ई आवाज टीवी आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है। आपने करना कुछ नहीं है, आपने अपना नाम, अपना फोन नंबर और फॉर उमरा ये टेक्स्ट में लिखकर आरफ मुजफ्फर साहबा को टेक्स्ट करना है 6478986245 पर आप जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यानी आपने अपना नाम लिखना है, अपना नंबर देना है और फॉर उमरा के नाम से करना है। शर्त आपकी ये है कि हमारी ये है कि आपकी एज 55 ईयर ओल्ड होनी चाहिए या इससे ज्यादा और आपने कभी उमरा परफॉर्म नहीं किया हो। तो जनाब बिल्कुल बट बिग डील आपके लिए 770 एएम और साजो आवाज ई आवाज टीवी की तरफ से आपके लिए डील है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो एक बार जरूर अपना नाम टेक्स्ट कर दें 6478986245। तो ये था, हो गया सिलसिला। अच्छा अब सारी चीजें हो गई, दांतों की भी मैं सफाई आपकी आज करवा देता हूं। चले जना, बहुत दिन हो गए दांतों की सफाई नहीं हुई है, दांतों की सफाई या कोई और अगर आपने दांतों का ट्रीटमेंट कराना है तो डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, जनाब डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा नाजिया रहमान होती है यहां, और इनका नंबर है 9058721100 इनका नंबर है, उनका एड्रेस है 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 और ब्रैम्पटन में है। तो आप एक बार जरूर नाजिया रहमान साहिबा को भी विजिट कर सकते हैं। चलें जनाब एक प्रोग्राम में गाना शामिल कर लेते हैं और फिर खातून जो है वो आज हमारा, आपको मालूम है कि हमने एक शायद रिपोर्ट भी करनी है और उस सिलसिले में भी हम ऐसा करते हैं पहले गाना लगा लेते हैं, थोड़ा सा खट्टी मीठी और दूसरी खबरों से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इससे पहले हम जो है वो एक गाना सुन लेते हैं। और गाना जो है जनाब आतिफ असलम की आवाज में रफ्ता रफ्ता, और हमारा नंबर 4166201778।
रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है। रफ्ता रफ्ता सनम तुम पे मेरी नजर तो हुआ है असर तक के ना मर जाइए नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन फिलिंग्स ग्राउंड्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466
के कनाडा जिसको हम जानते हैं इन दिनों पीछे की तरफ जा रहा है ट्रूडो और एनडीपी लिबरल्स के 9 सालों के बाद अखराजात बढ़ गए हैं सड़कें खतरनाक और गैर महफूज हैं और लोग गुर्बत में जी रहे हैं लेकिन हम चीजों को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन सेंस लीडर कंजर्वेटिव पे पॉलिट के पास एक मंसूबा है जिसका मतलब होगा कि सख्त मेहनत करके एक भारी आमदनी हासिल की जा सके सस्ती खुराक और मकान खरीदा जा सके और महफूज मोहल्लों में जिंदगी गुजार सके उस मुल्क में जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं आइए मिलकर एक बेहतर कनाडा बनाएं ये पैगाम पे पॉलिव और कॉमन सेंस कंजर्वेटिव के तावुन से पेश किया गया
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसा कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522 302-2522
भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं चूड़ियाँ ले लो कड़े ले लो चेन्स ले लो स्टोन ज्वेलरी रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी आप या किसी को गिफ्ट देने के लिए यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड 9056776888
ویلکم بیک تمام سامعین اور ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی جو اسٹوڈیو میں حاضر ہیں, اسنیپ چیٹ چیک چیک میں بزی ہیں, لیکن میں ان کو آج آپ بولیں گے کہ عامر بھائی تھوڑا تین منٹ پہلے یا چار منٹ پہلے, بیس پچیس, ہاں تقریباً سات آٹھ منٹ پہلے, دس منٹ پہلے آپ نے میوزک چلا دیا. جناب میوزک تو میوزک ہوتا ہے نا, لائف کا میوزک جس وقت بج جائے اس سے پہلے یہ میوزک سن لیں جناب. تو ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ گہری نظر ڈالنے, گہرے کسی بہت ہی شدید ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں پروگرام میں وہی جو آپ کا ہیموگلوبن لیول بڑھا دیتی ہیں, شازیہ ملک صاحبہ. آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام, کیسے ہیں جی؟
الحمدللہ, دعائیں آپ کی زندہ ہیں اب تک؟
ابھی تک زندہ ہیں. یہ تین دن سے کالے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ یہ کس کے پروٹیسٹ میں آج؟
کل تو میں نے کچھ اور پہنا تھا.
نہیں نہیں نہیں, یہ تین دن سے کالے کپڑے چل رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟
یہ آج تو تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا, کالا کسی خاص کمبینیشن کی وجہ سے میں نے کالا پہن لیا.
اچھا اچھا,
نتھنگ پری پلانڈ کچھ؟
ہاں
کالا
نہیں نہیں, لگ مجھے یہی رہا ہے کہ یہ تمہارے جو ڈرامے ہیں نا بہت بڑھ گئے ہیں, روز کالا روز کالا روز کالا, یہ بھائی یہ کیا چکر ہے؟ یہ ہمیں بھی تم نے کالے کے اوپر ڈال دیا.
زندگی اندھیری
کالی ہو گئی ہے.
الحمدللہ
اندھیری ہو گئی ہے.
نہیں اندھیری نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ سب کو روشنی دکھائے.
یا کینیڈین گورنمنٹ نے اتنی انی پائی ہے کہ ہم بھی
نہیں. میرا جو معاملہ ہے نا, جب دیکھو بہت ڈارک اندھیرا جب ہو جاتا ہے نا, جہاں آپ کے ہاتھ مطلب ہاتھ دوسرا ہاتھ نہ دیکھے, روشنی قریب ہے.
اچھا,
یہ ہے فلسفی. تو بالکل ایسی چیز ہو جائے نا جب کہتے ہیں کہ ایک دم آپ کے ہاتھ بھی آپ کو نظر نہ آ رہے, وہ الگ بات ہو, اگر آپ کے کالے ہاتھ ہیں تو ویسے نظر نہیں آئیں گے میرے جیسے.
پاکستان میں بھی لوگوں میں پیسے آ رہے ہیں اور اپنے پیسے نظر نہیں آ رہے, جب ہی آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے ہاتھ میں, تو ان کی روشنی کب آئے گی؟ ان کی زندگی میں روشنی کب آئے گی؟
وہ ہے نا جب
آئے گی. آج کی ایک نیوز ہے بہت بڑی جو ہم آپ کو سنائیں گے, ان کی زندگی میں جلدی روشنی آنے والی ہے.
اچھا پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں؟
پاکستان میں پیسے بھی آ رہے ہیں, ان کی زندگیاں بھی اچھی ہونے والی ہیں.
تو پھر لوگوں کی
سب پاکستان
کے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کا بھی بیان سنا تھا, دو تین بلین شاید سعودی بھی دوبارہ دے رہے ہیں, کچھ انویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا 7 بلین وہ, تین چار تین, یہ تو 10 بلین ڈالر,
2 بلین
دو کر رہے ہیں, 3 بلین 10 ہو جاتے پورے.
بھیک مانگیں گے
وہ ملیشیا ملیشیا ادھر ادھر یو اے ای دے دے گا,
کپڑے بیچ کے پیسے جمع.
آپ ایسے مذاق لوگوں کے ساتھ نہ کریں, بےچارے معصوم لوگ ہیں یہاں. آپ ان کو جھوٹے خواب دکھا رہی ہیں, حالات صحیح ہونے جا رہے ہیں اور پیسہ آنے والا ہے لوگوں پہ.
اچھا جی, ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ ہم آپ کو اسپیشل رپورٹ دکھائیں گے اور کل ہم اپنی خبریں اسپیشل رپورٹ کے ساتھ شروع کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پہ چیف ریپرزینٹیو جو ہیں پیلسٹائن کی, وہ ہمارے ساتھ ہوئیں گی, مونا ابو امارا, تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اسپیشل رپورٹ ہے آپ کے کہنے پہ, یہ پیلسٹائن پہ بنائی ہے, اس میں بہت سارے آنکڑے ہم نے جمع کیے ہیں, وہ آنکڑے ہم دیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے ساتھ مونا ابو امارا صاحبہ بات کریں گی. اینڈ دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی سجاد علی شو, جو ہونے والا ہے اکتوبر 26 کو ایٹ دا میٹنگ ہاؤس اوکول کے اندر. تو آپ مو شیخ صاحب کو کال کریں اگر آپ کو ٹکٹس چاہیے. نمبر از 4168181184. اور اس کے علاوہ جناب اوپن مائک کیفے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہیں 1310 ڈینڈا اسٹریٹ ایسٹ کے اوپر ہیں اور بڑے زبردست قسم کے کھانے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر کال کرنی ہے تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, ناصر شاہ صاحب کو. ان کا نمبر ہے 4165266800. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, ہم اپنی اسپیشل رپورٹ شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمارے ساتھ ابو امارا صاحبہ جو ہیں وہ جڑیں گی تو ہم آپ کو جو ہے ان سے بھی بات چیت سنوائیں گے کہ جو ہے وہ اگزیکٹلی وہاں پہ پیلسٹائن میں اس وقت جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. یہ جناب جو اسپیشل رپورٹ ہے اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بیسیج ناردرن غازہ ہے وہاں پہ سروائیورز وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی بری حالت ہو چکی ہے, ہاسپٹلز کے اندر میڈیسنز نہیں ہیں, کہ دے آر بلیڈنگ ٹو ڈیتھ. اس کے علاوہ عامر جو سب سے زیادہ رونے کی بات ہے وہ یہ ہے رونے کی بات کہ لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ عامر پڑی ہوئی ہیں اور کتے کھا رہے ہیں ان لاشوں کو, ان لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو الجزیرہ. ان کو دفنا نہیں یہ سک رہے ہیں, ہزاروں پیلسٹینینز جو ہیں ان کو مارا جا چکا ہے کانسٹنٹلی. ان کے ہاسپٹلز کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, سکولز کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور وہاں پہ جو فنکشنز ہیں وہاں اس کے ہاسپٹل کے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے ہیں. عورتیں جو ہیں, یعنی آپ سوچیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیڈز تک نہیں ہیں کہ وہ کیسے یوز کریں ڈیورنگ جو اپنے پیریڈز ہیں ان کے بیچ میں. وہ سوچیں ذرا وہ کس حالت میں رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پیلسٹینین جو یہاں پہ چیف ہیں, ان کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا, مونا ابو امارا. उनके साथ हम बात करते हैं और उनसे हम एग्जैक्टली पूछते हैं और फिर उसके बाद हम आपको ये सारे आंकड़े जो हैं ये सारे सुनाएंगे कि इस वक्त तक क्या कुछ गाजा के अंदर हो चुका हुआ है। हेलो मोना, हाउ आर यू?
गुड, हाउ आर यू?
ओके, वी आर सो गुड टू सी यू, यू सो गुड टू सी यू। ओके माई डियर, प्लीज टेल अस एग्जैक्टली नाउ एट द मोमेंट वट इज द ग्राउंड सिचुएशन देयर इन गाजा। आई मीन ऑफकोर्स वी नो सम ऑफ द यू नो द न्यूज दैट वी गेट ऑन डेली बेसिस, बट ऑफकोर्स बिकॉज योर फैमिलीज, योर रिलेटिव आर देयर, सो यू वुड बी एबल टू गिव अस अ बेटर पिक्चर।
So if we go to families and friends that are on the ground, the first message that they send to everyone is that no matter how much of the gravity you see on TV or you hear, it's nothing compared to what is actually happening on the ground. It's a nightmare. It's a monster that has been created by impunity for decades by the West and the free world in general. And now no one can stop it. It's a monstrous, evil machine that is committing genocide on the ground. Unfortunately, it's been 365 days and counting of live stream genocide while the world is watching. Israel is bombing everything that it sees in sight, claiming under the pretext of security, claiming that it gets to do no matter what it comes to its mind. It's not sparing children, women, the elderly. We have famine. We have polio that was going around, epidemics, diseases, starvation, all these horror stories that are happening on the ground, and no one is able or willing to stop this madness and hold Israel to account.
Okay. Mona, my dear, the problem with the Muslim world is that they definitely are just paying lip service. Nobody has vehemently said that, you know, this massacre and this genocide should stop. However, West that talks too much about the crimes against humanity and human rights, who give us lectures on all these things, is also absolutely blind. Even today, they have pulled up Hungary, the European Union have pulled up Hungary, saying that the human rights are not right in their country. And why Hungary is standing with Russia? Because Russia is an invader in Ukraine. However, they fail to see that Israel also is an invader in Palestine. So my question is that on one side, the West is absolutely deaf, dumb, blind, but we also cry for the Muslim world that has not taken any concrete steps. What do you have to say about this?
So at this point, we are trying to actually concentrate on international law. We have been pushing for the implementation of, as you said, what the free world has been preaching to all the uncivilized states that it sees. At this point, we realize that it sees as lesser people because Palestinians for sure feel that their lives are not as worthy or as valued as other lives that we know of. And we know that the world has intervened in so many ways in the Ukraine, Russia issues. We saw all the tools and all the ways that they can help. At this point, I know that the Arab and Muslim world stood in one position, stating that they are all rooting for peace, and saying that at the end of the day, Israel is the one that is declining that and claiming that it's for its own security, while it's the only threat on the ground to other countries that is bombing indiscriminately. At this point, we're seeing in Lebanon, in Syria, in Iraq, and now it might lead the world into a regional war as well. So at some point, this needs to be stopped, and I think that it should come from those who shield and protect Israel and has done so for the past decades. The impunity needs to end, and we need to hold it to account. Based on the international resolutions, on the ICJ advisory opinion, and every single piece of law that Israel should not be above.
Okay, I have some reports from the international media, and they say that at least 96% of the population in Gaza is at the verge of not just starvation, but worse starvation. They don't have water. They don't have food. Do you have any information if from any side Israel is letting food, medicines, and essentials to enter Gaza?
So the international community is trying, the international organizations have been trying and reporting the dire situation and reporting that not even a drop in the bucket, 2% of what the people under these situations need is being allowed to get into Gaza. So that's why it's accumulating. And Israel is claiming that this is not happening. Even a few days ago, I went on to an interview on CBC, and the apartheid and genocide ambassador came before me and told the reporter, you spoke to me a few months ago about a famine and about a disease, and there's nothing like that happening on the ground. There is an utter out of reality situation with Israel that it claims that it's doing everything that the court has ordered it, while it prevents everything to reach children, women, elderly, those people. 2.3 million civilians are in this dire situation with nothing to hold on to.
Okay. Can you please tell us, we know that most of the hospitals, most of the health clinics, most of the schools have been absolutely devastated, but what is your report? What are your families or your relatives are telling you about the healthcare system? I mean, of course, talking about education doesn't make any sense at the moment because it's a war zone. But what is the condition of healthcare? Because a lot of doctors have died, a lot of nurses, facilities management staff has died over there. So are the hospitals somewhat working? Because I have report that patients are bleeding to death there.
So we only have 17 out of 36 hospitals partially functional. It's not even fully functional. And the hospitals are not only used right now as as hospitals, it's also looked at as shelter place for people who don't know where to go because there's no place that is safe. And they feel that at least hospitals should be a place to be in. I know from my personal stories of friends and family that if someone is injured, the whole family tries to go with that injured person so they won't stay on the streets and at least have a roof over their head and be together and not start losing family members and not know where they're going to see them again. So we have a dire medical situation on the ground, no resources. The doctors are overwhelmed. They're scared for their lives. We have had kidnappings that have happened to a lot of doctors, and they were they went through hell in prisons. We are seeing very, very egregious way of torture and rape and a murder in prisons because there's impunity and lack of accountability. So, yes, it's a dire medical situation, and we wish that countries like Canada would be one that interferes in such a way to provide a safe place for people to even just get the medical attention they deserve.
Okay, I also have heard that something like 160,000 breastfeeding women don't have access to proper food. They need some supplements. Similarly, there are something like 50,000 kids who are undernourished. So again, my question to you is, I'm going back to my, you know, second question once again. Do you have any news that Israel is letting the food and medicine convoys inside Gaza, or they do not have access to these things even now?
We, as I told you, it's very the lack of proper route for those safe arrivals for the convoys to get medical supplements, resources, and food into Gaza. It's a drop in the bucket, you might find one day that there are a couple of trucks that are allowed, but in general, the percentage is 2% of what the people actually need, and that's why operations are made without anesthetics and anesthesia, and people are experiencing even higher level of symptoms and reactions because they don't have the proper way to deal with even less severe wounds that would be otherwise treated very easily. So no, Israel is not allowing proper route for people to get food or medical resources. They lack everything, all the needs of the medications. We have 17% of lack of medication, and 83% of supplies are lacking in hospitals.
Oh my goodness, I couldn't even imagine. You just said that the operations are being done without giving anesthesia. I was about to faint when I, you know, heard this thing what you said. Okay, at the moment, what is the what outcome do you see in the coming days? Do you think ceasefire will eventually come? Although a full generation of Palestinians have been, you know, killed, it was a proper genocide that took place. Israel recently celebrated Yom Kippur. Are they repenting? Are Jews repenting? Or the Jews across the globe telling Netanyahu to stop this? What do you see in future? Do you see a better thing, a better outcome in the coming days? Because now we have also heard that a lot of bilateral travel also has stopped. Yoav Gallant had to go to U.S., and meet Mr. Austin, and Lloyd Austin had to come from U.S. to meet, but those visits also have cancelled. So, two, three things, yeah. I'm asking you. Yom Kippur that they just celebrated, are they repenting? Are Jews across the globe asking Netanyahu to stop? And what is the impact of these cancelled trips? Or so, did they have any significance at all?
The first two things concerning the Jewish communities, first and foremost, we as Palestinians see that this is a problem to associate anything regarding the Jewish community with our struggle, because that's what Netanyahu has tried to link forever, just pretending to be protecting the Jewish communities by oppressing the Palestinians, because our struggle has nothing to do with religion or ethnicity. It's about oppression, occupation, and apartheid, and now genocide. That is one thing. And the other, we have a lot of Jewish organizations, a lot of them doing one of the most amazing accomplishments to help us show the world what our struggles means. They lead in the U.S. and in Canada to put themselves in that position as self-hating Jews sometimes in front of some of the pro-Israeli Zionist lobby. So, yeah, we couldn't thank them enough for spreading our narrative and the real reality of what's happening. When it comes to the U.S., I think that we already know the support of the U.S. to the, like, unconventional one, and it does not matter what Israel does, the U.S. will always be supporting it, because it's part of its whole vision of the world, and it doesn't want anything to affect it. So by default, not to affect its occupation on the ground. So unfortunately, we see now that no one, after creating that monster, has an effect on the machine of genocide that has been created due to impunity, as we say. So we hope that the U.S. at some point realizes that it needs to show its ally that that's enough, and no more support would be given, because it's putting everybody else in a position as if they support such atrocities, and it's becoming much harder to ignore them as time goes. So I hope those meetings actually bring sense to Netanyahu, although I doubt, because his personal aspirations to run away from...
Not only his personal aspirations, but also because there are a lot of corruption charges on him, so he just wants to keep
exactly.
people busy in war so that he doesn't go to jail yeah. for the rest of his life. So it
exactly.
is all the matter of his own survival.
Exactly.
Okay, Mona, thank you very much for your comments. My just last, absolute, very, very last question would be, what is your message, and how do you see the morale of the Palestinians? I mean, it's a very difficult question to ask you in this situation, but still I just thought I will ask you, because the war seems to be spreading, and you might have realized that the Iranian foreign minister now is either in Saudi or in Qatar. He's talking to all of them to stop this war, and as you said earlier, the war is spreading now to Syria and Yemen and Iran and Lebanon. So what is your last message, and what is the morale of the Palestinians?
So what we know, that out of all of this evil, the true face of Israel has been shown to the world. No matter how their support stays unaffected, we know that countries of liberal democracies have seen enough of atrocities not to justify such actions for Israel to continue as the relationship, the bilateral relationship that it has had before. As for the Palestinians, we have been traumatized and felt left alone, of course, generation. To restore the belief in humanity. Work towards the implementation of the ICJ advisory opinion and the resolution that the Palestinians have submitted in the United Nations General Assembly. And we know that no occupation will last forever and no tyranny will last forever. We want to save as many lives before we get to the end line and become free and sovereign.
Thank you very much, Mona Abu Abara, for your very, very insightful discussion with us. We really thank you for your time, and we would like to connect with you once again. But that's all the time that we have today, so bye for now.
Thank you.
Okay, जी हम अपनी ये जो अब रिपोर्ट है ये अब आपको बता देते हैं. कुछ बड़े दिल दुखाने वाले फैक्ट्स हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करूंगी. 75,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स जो हैं अभी तक गाजा के ऊपर डाले जा चुके हैं. इसके अंदर जो है 42 मिलियन टन्स का डेब्री जो है वो जमा हो गया हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारे अन एक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं. 34 हॉस्पिटल्स, 80 हेल्थ सेंटर्स सब आउट ऑफ सर्विस हैं. 162 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बर्बाद किया है इसराइल ने. 131 एम्बुलेंसेज को उसने बर्बाद किया है, और ये सब का सब जो है अंडर वॉर क्राइम्स आता है जब आप हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को हिट करते हैं. इसकी जो बम्बार्डमेंट है कॉन्स्टेंटली इसराइल की, उसकी वजह से 986 मेडिकल वर्कर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है. 165 डॉक्टर्स मर चुके हैं, 260 नर्सेज, 184 हेल्थ एसोसिएट, 76 फार्मासिस्ट, 300 सपोर्ट स्टाफ जो है उन सब की डेथ हो गई है. इसके अलावा 175 जर्नलिस्ट जो कि इसको कवर कर रहे थे उनकी डेथ हो चुकी है. वो मोस्टली जो थे वो जर्नलिस्ट थे पैलेस्टाइन से. 1.9 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, और ये बेचारे कई दफा पिछले 60 साल में डिस्प्लेस हुए हैं. 8,000 to 10,000 जो सिविलियंस हैं वो मिसिंग हैं. 41,000 पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड किड्स जो हैं उनको मार दिया है इसराइल ने. 10,000 बुरे तरीके से गंभीर अंदाज में जो हैं वो इंजर्ड हैं. अक्टूबर 8 को अभी एक रिपोर्ट आई थी नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की, जिसका कि मैंने जिक्र बड़ी दफा किया है. 138,000 लोगों जो हैं उनकी अभी तक डेथ्स हो चुकी हैं. 97,590 हर्ट हैं अकॉर्डिंग टू देम. 10,000 आर मिसिंग. 1.9 मिलियन जो है उन्होंने अपने घरों से वो भाग गए हैं। 90% ऑफ द टोटल ये गाजा की पॉपुलेशन बनती है। 60% ऑफ ऑल होम्स, 80% ऑफ कमर्शियल फैसिलिटीज तमाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 65% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क खत्म हो गया है। 625,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कोई एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। स्कूल्स को शेल्टर में बनाया गया है मगर उन स्कूल्स को भी जो है कॉन्स्टेंटली बम्बॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा 416 एजुकेशन जो स्टाफ है जिसमें कि टीचर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। 95% ऑफ स्कूल्स जो हैं उनको डायरेक्टली इसराइल ने हिट किया है। 1 मिलियन किड्स जो हैं उनको इस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। 96% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसके पास फूड क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी है। 495,000 लोग ये बनते हैं टोटल। 346 बच्चे जो हैं अंडर 5 उनको भी वो भी फेस कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी। 160,000 प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है उनके पास प्रॉपर जो है फूड नहीं है। 50,000 किड्स जो हैं वो दे आर फेसिंग एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि जी हमास खराब है और हिजबुल्ला खराब है और ईरान जो है ये सारे ईवल हैं और वो जो मेन ईवल मिडल ईस्ट में बैठा हुआ है उसको थावड़ा दिया जा रहा है कि वेरी गुड भाई तुम बड़ा अजीम काम कर रहे हो ये करते रहो। तो ये थी जनाब हमारी इसराइल के ऊपर जो है और पैलेस्टाइन का जो अक्टूबर 7 का पूरा एक साल हुआ था उस पर स्पेशल रिपोर्ट। वी होप के आज की रिपोर्ट जो है आपने सुनी होगी तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जो है वो ऑल स्टेट के साथ होते हैं और उनके पास बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है आपको इंश्योरेंस की बहुत अच्छी सर्विस देंगे। उनसे बात कर लें, उनका नंबर है 6472903773 एंड पायल ज्वेलर्स। इनकी जो है बहुत जबरदस्त 22 कैरेट ज्वेलरी है। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर से लेकर आए। असलम भाई को कॉल कर लें एट 9057907879 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी बाकी की खबरें। फेडरल इंक्वायरी एक बिठाई है जो कनाडा के पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस होता है उसके लिए, और आज जो हियरिंग है उसके लिए बुलाया हुआ है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हमारी जो मेलानी जोली हैं उनको। इससे पहले जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर थे मार्को मेंडिचिनो उनको बुलाया गया था कि कमीशन के ऊपर आप इंक्वायरी पे बात करें। जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है उसने कहा जी कि ये जो डेट्स हैं ये इनकी जो आउटकम होगी वो फिर बताई जाएगी आपको। इंक्वायरी की जो लेटेस्ट हियरिंग्स हैं वो अब फोकस करेंगी कि जो एजेंसीज की एबिलिटी है वो क्या इतनी है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन मेडलिंग जो है फॉरेन कंट्रीज की वो हो रही है कनाडा के मामलात में। ये हियरिंग्स कंक्लूड जब होंगी तो उसके बाद काफी दिन लग जाएंगे, काफी वीक्स लग जाएंगे। यानी कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि बाय द एंड ऑफ द वीक जो है इसके अंदर जो भी कोई आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिकमेंडेशंस वगैरह, वो एंड ऑफ द ईयर तक आ सकेंगी। ट्रूडो साहब को हमने आपको बताया था कि वो आसियान की मीटिंग लेने के लिए गए हुए हैं लाओस में। वहां पे उनके साथ आज बहुत सारे लोगों की मुलाकातें हुई। सबसे पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेटोंग तरन शिनावात्रा को, और उन्होंने कहा जी आपने बहुत ही अजीम काम किया है जो आपने लीगलाइज की है सेम सेक्स मैरिज। और उसके बाद इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स थी एशियन लीडर्स के साथ। उन्होंने कहा जी कि जो काम थाईलैंड ने एलजीबीटी के लिए किया दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रहा, हम उसको बड़ी शाबाशी देते हैं। थाईलैंड के अंदर ये जो मैरिज इक्वालिटी बिल था इसको ऑफिशियली अडेप्ट किया गया था अभी सेप्टेम्बर में ही, उसी की बात जो है ट्रूडो साहब कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये अपने डिप्लोमेटिक मिशन को अपग्रेड कर रहे हैं। विंटियान जो कि लाओस का है कैपिटल और नोम पेन में भी कंबोडिया के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ट्रूडो साहब ने कि हम भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी स्ट्रांग करना चाहते हैं क्योंकि कनाडा भी पैसिफिक कंट्री है तो हमको आपकी जो बातें हैं वो समझ में आती हैं। फिर इन्होंने मुलाकातें की जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके साथ, और इसके साथ साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, कंबोडिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी हुई हैं। कल जुमे के दिन जो है कनाडा अनाउंस कर सकता है 2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का हेल्प टू फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेकोंग रिवर जो कि कुछ ये जो आसियान के कंट्रीज हैं उनके बीच में बहता है। रॉयल डिपेज जो है जी, रॉयल डिपेज की आज की खबर है कि हाउसिंग मार्केट जो है वो शायद पिकअप कर सकती है। उन्होंने आज अपना जो प्रिडिक्ट किया है कि उसमें रीबाउंड आएगा। काफी स्लगिश जो है वो चलती रही है लेकिन ये इसके अंदर रीबाउंड का जो है वो अब मौका है। वो कहते हैं जी थर्ड क्वार्टर में जो होम सेल्स का जो उन्होंने अपडेट किया और मार्केट जो फोरकास्ट दिया है उसमें वो कह रहे हैं एग्रीगेट होम्स प्राइसेस जो है वो राइज की है 1.6% ईयर ऑन ईयर टू 815,500 इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, लेकिन ये डिक्रीज की थी 1.1% से प्रीवियस क्वार्टर में. 1.1% डिक्रीज जो था इट वॉज ड्यू टू स्लगिश एक्टिविटी, और लेकिन वो कहते हैं जी समर में फिर इसने पिकअप करना शुरू किया और सितंबर में आते आते काफी पिक किया. जो डाटा इनका थर्ड क्वार्टर का आया है उसमें वो कह रहे हैं जी कि सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम्स जो है उसकी प्राइस 2% ऊपर गई ईयर ऑन ईयर टू 850,400, और कॉन्डो जो है उसकी 0.5% से प्राइस ऊपर गई टू 590,200, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो मीडियन प्राइस ऑफ सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम है वो डिक्रीज की थी 1.2% पे, और कॉन्डो की प्राइस डिक्रीज हुई थी 1.1% से. लेकिन वो कहते हैं जी ये प्राइसेस जो हैं और मार्केट भी ठीक हो जाएगी. हरिकन मिल्टन जो है वो अब अटलांटिक ओशन से होते हुए फ्लोरिडा के अंदर दाखिल हो चुका है, और यहां पे इतनी उसने तबाही मचाई है कि ओवर 3 मिलियन जो लोग हैं उनके पास बिजली भी नहीं है. इसने कोई 150 टॉर्नेडोज भी लेके आया, उसकी वजह से काफी सारी यहां पे डेथ्स हुई हैं. इसको कैटेगरी 3 स्टॉर्म जो है वो कहा गया है. 112 किलोमीटर साउथ ऑफ टैम्पा में इसकी हवाएं चल रही हैं, और ये डैमेज जो है बेतहाशा इसने किया है, और जो रेन है वो कह रहे हैं जी 18 इंचेस तक रेन्स जो हैं वो आएंगी. ये वर्स्ट स्टॉर्म है सौता काउंटी जो है उसके अंदर, और वो कह रहे हैं जी कि इससे पहले ये सारे का सारा इलाका जो था इसको बैटर किया था हेलन ने, यानी कि हेलन ने ऑलरेडी काफी तबाही मचाई थी, लेकिन हेलन ने जो तबाही मचाई थी उसने ला के कोई तकरीबन 6 फीट ऊंचे जो रेत के ढेर खड़े कर दिए थे घरों के सामने. तो उस वक्त जो घरों की छतें और चीजें उड़ी थी वो अब शायद नहीं उड़ेंगी, क्योंकि ये जो रेत के जो ढेर हैं ये शायद घरों को अब बचाएंगे. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अक्टूबर 5 का आउटकम क्या होने वाला है. हालांकि हमने तो आपको बड़ी दफा बता दिया कि कमला हैरिस ने जीतना है, बहरहाल उनको समझ में नहीं आ रही है. प्रोफेसर एलन लिचमैन सिंस 1984 वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कौन जीतेगा, और 10 रेसेस जो है जो इन्होंने प्रिडिक्ट की थी इन द लास्ट 4 डेकेड्स वो जो थी इनकी बिल्कुल सही निकली थी. नियर परफेक्ट इनका रिकॉर्ड है. इनको नॉस्ट्रोडेमस ऑफ यूएसए भी कहा जाता है. इन्होंने 2016 में ट्रम्प साहब की विक्ट्री जो है उसका जिक्र किया था, और इसी तरह इन्होंने कहा था कि जो रशियन साइंटिस्ट किलिस बोरक जो है उनका मेथड मैं अप्लाई करता हूं, और उन्होंने जो है ये किलिस बोरक जो थे ये अर्थक्वेक के प्रिडिक्शंस करते थे. वो कहते हैं जी मेथोडोलॉजी मैं भी वही यूज करता हूं, और उन्होंने कहा जी कि मैंने सारे जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए 1860 से 1980 के बीच में उन सबको इस मेथड पे डाला है, और मुझे हर दफा जो है राइट आंसर मिला. ये 13 कीज यूज करते हैं, इसका जिक्र हमने आपको पहले भी बताया था एक दफा. 13 कीज मेथड है इनका, जिसमें कि वो इंडिकेटर्स देखते हैं कि इनकम्बेंसी क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमी, सोशल अनरेस्ट, व्हाइट हाउस स्कैंडल्स, उसके ऊपर उसके मुताबिक जो है ये प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कमला हैरिस जीतेंगी और ट्रंप साहब जो हैं वो नहीं जीत पाएंगे, ये अनलॉक करेंगी व्हाइट हाउस को. इसी के होते हुए ये जो सारी प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं, कमला हैरिस साहबा ने अपना मीडिया अपीयरेंसेस जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और सारे छोटे बड़े कोई देख ही नहीं रही है कि कौन सा मीडिया आउटलेट है, सबको इंटरव्यूज धड़ाधड़ दे रही है ताकि लोगों के अंदर एक तो इनका एक इमेज बने और लोगों के अंदर इनकी अपील भी जो है वो बन सके. यूरोपियन यूनियन ने आज हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर जो है विक्टर ऑर्बोन उनको बहुत ज्यादा खींचा उनके मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के मसले हैं उसके होते हुए, और ये भी कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ वो कॉन्स्टेंटली खड़े हुए हैं और उनको भी कंडेम नहीं कर रहे हैं जबकि यूक्रेन की वॉर जो है वो चलती चली जा रही है. वो कह रहे हैं जी कि आपका ये जो रशिया फ्रेंडली एटीट्यूड है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको भी खराब करता है जब आपके कंट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी को झटके लगते हैं. आज ये सारी बातें जो है ऑफिशियल्स ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर की, जहां पे कि यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो है उसका सेशन चल रहा है. यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने कहा जी कि ये जो एट्रोसिटीज, बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग आज आमिर सेंटेंस बोला है ये जो है उर्सुला वॉन डेर ने, उन्होंने कहा जी कि रशिया को हम एक इन्वेडर देखते हैं, उसका जो लस्ट है पावर के लिए और सारे इलाके पे कब्जा करने के लिए वो बड़ा खराब है, तो तुम इस इन्वेडर के साथ कैसे खड़े हुए हो? और उन्होंने उनको उसको विक्टर ऑर्बन को कहा, जबकि यूक्रेन जो है वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। तो मैं बाजी से पूछना चाहती थी, बाजी आपका क्या ख्याल है इसराइल के बारे में कि वहां पे भी पैलेस्टीनियंस अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और इसराइल एक इन्वेडर की तरह उनके मुल्क में एंटर हुआ है? तो ये स्टेटमेंट आपकी पैलेस्टाइन के ऊपर तो मैंने नहीं सुनी, तो इधर आपको बड़ी तकलीफ हुई है जी? तो ये आज उन्होंने बड़ी फनी जो है ये एक जो सेंटेंस दिया, तो मुझे बड़ी हंसी आई उनके इसके ऊपर। इसके अलावा उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने किया था, जब ऑर्बन साहब ने जुलाई के अंदर ट्रेवल करके वो मॉस्को में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरा पीस मिशन है, उसके अंदर मैं दोस्ती बनाने के लिए गया था। तो उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन का कंसेंट लिए बगैर आप कैसे गए? उसके बाद फिर वो बीजिंग भी चले गए थे, उस पर यूरोपियन यूनियन जो है बहुत ज्यादा भड़क गई थी। आज जो बातें हुई उसके अंदर मैनफ्रेड वेबर जो कि लीडर है ऑफ कंजर्वेटिव ईस्टर्न पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी मैं शॉक्ड हूं कि इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के सेशन में, उसमें एक सेंटेंस भी इन्होंने यूक्रेन के ऊपर नहीं बोला। और इनकी ये जो रोग डिप्लोमेसी है उसको यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा कंडेम करती है। को लीडर जो थे टेरी रिंथ के, उन्होंने कहा जी कि हम जो है बिल्कुल इनको वेलकम नहीं करते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन हाउस ऑफ डेमोक्रेसी है, इन्होंने हंगरी को जो है डेमोक्रेसी रहने नहीं दिया है। वॉर्नर डेयर ने भी इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि इनका जो माइग्रेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये हर किसी को जो है वो बुलाते जा रहे हैं, खासतौर पर रशियन नेशनल्स को, उनमें बहुत सारे जो हैं वो कॉन्विक्ट्स हैं, तो ये कैसे ये जो है उनके लिए इमिग्रेशन इन्होंने खोली हुई है बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के। ना सिर्फ ये रिस्क जो है इन लोगों का हंगरी के अंदर बढ़ा रहे हैं बल्कि और मेंबर स्टेट्स में भी बढ़ा रहे हैं। तो जनाब ये बातें हुई। एलआईसी पैलेस जो है जी उसके अंदर आज जेलेंस्की साहब जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकातें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब के साथ हुई हैं और इसमें एक दफा से फिर से फ्रांस ने कहा है कि वो इनकी जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वो रखेगा, कायम रखेगा। ये जेलेंस्की साहब का फिफ्थ ट्रिप है पैरिस के लिए, जो कि शुरू हुआ था जब वॉर शुरू हुई थी उस वक्त से इन्होंने आना शुरू कर दिया था। और इन्होंने कहा था जी कि हमको हेल्प दें और हमारे लिए क्लियर करें ये जो आपने हमें वेस्टर्न वेपन्स दिए हैं ताकि हम ये रशिया के अंदर इसको टारगेट कर सकें। इसके साथ साथ जो मैक्रों साहब हैं उन्होंने एक बड़ा रेयर विजिट किया क्योंकि जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं यहां पे वो मिलिट्री कैंप्स में नहीं जाते हैं, लेकिन वो गए और वहां पे उन्होंने जाके एक ब्रिगेड जो है यूक्रेनियन ट्रुप्स की उनको जाके विजिट किया जिसको कि फ्रांस जो है ट्रेन कर रहा है। फ्रांस की मिलिट्री तकरीबन 2300 यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है उनको ट्रेन कर रही है और फ्रांस काफी पैसे जो है यूक्रेन के लिए दे रहा है। अब जब ये काफी पैसे दे रहे हैं और ये जाके कैंप में भी इन्होंने किया तो क्रिटिक्स जो हैं फाइनेंशियल क्रिटिक्स उन्होंने काफी सारा जो है उसके ऊपर वो गुस्से का इजहार किया क्योंकि फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन बेतहाशा बुरी है और ये जो अभी इनका बजट आने वाला है, फ्रेंच जो फाइनेंस मिनिस्टर और फ्रेंच बजट मिनिस्टर हैं वो बिलियंस ऑफ यूरोस कट करने का सोच रहे हैं ताकि डेफिसिट जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है बजट का उसको कम किया जा सके। बजट डेफिसिट जो है वो अब जो इनका इकोनॉमिक आउटकम है उसका 6% को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फार मोर देन 5.1% जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के बीच में था। तो अब लोग वहां पे पूछ रहे हैं कि जब फ्रांस की हालत खराब होती जा रही है तो ये इतने पैसे जो है मुल्क से बाहर कैसे निकाल रहे हैं। जैसे कि आपने आपको जर्मनी की कंडीशन बताई है कि जर्मनी की कंडीशन बड़ी पतली होती जा रही है, तो यही बड़ी यही दो बड़ी इकोनॉमीज हैं यूरोप की, एक फ्रांस और एक जर्मनी, तो अगर यही बैठ जाएंगी तो आप सोचें कि बाकी यूरोप पे क्या असर पड़ेगा। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गोइडो क्रोसेटो, उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा बुरा मनाया है कि जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के हेडक्वार्टर्स को जो इसराइल ने आज जो है बॉम्ब किया है लेबनान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि ये जो शूटिंग की गई है UNIFIL हेडक्वार्टर्स की और जो दूसरे इस तरह के ये जो काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के कॉन्वॉयज के साथ ये बिल्कुल इनटॉलरेबल हैं, इनको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है और इनको ये अवॉइड करने की भी जरूरत है क्योंकि आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस के अपने लोगोज हैं, अपने कलर्स हैं, तो वो बिल्कुल अनडिनाइबल होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि हमने जी पहचाना नहीं उसको, आप बिल्कुल उसी प्रोटेस्ट में आज इन्होंने जो है इजरायली जो एम्बेसडर टू इटली हैं उनको भी बुलाया और ये जो इसराइल का एक्ट है उसको बहुत ज्यादा कंडेम किया है और उन्होंने कहा जी कि ये दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसके साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है जियोर्जी मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और हमने बिल्कुल बड़े स्ट्रांग वर्ड्स में प्रोटेस्ट किया है इसराइल की अथॉरिटीज के साथ, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और फ्रांस जो है वो इसके अलावा फ्रांस ने भी कहा जी कि हमको भी इसराइल की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के जो टॉप डिप्लोमेट हैं जोसेफ बोरेल, वो भी जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया है। स्पेन ने इसको ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ बोला है और उन्होंने कहा जी कि आप इसके बारे में बताएं। तो ये सारी कुछ तो इसराइल गाजा के अंदर भी करता रहा है, तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। खैर, स्पेन तो फिर भी कोई थोड़ी बहुत आवाज उठाता रहा। यूएई जनाब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब एक बहुत बड़ा एक और स्टेप लेने जा रहा है। उन्होंने अपना जो एक उनका लॉ था, एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन ऑफ फेडरल डिक्री लॉ, इसको रिलीज किया था जो अक्टूबर 2 को। इसमें जो यूएई की फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, उसने बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आए हैं और उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे और प्रोसेसेस समझ नहीं आ रहे थे, उनको आज उन्होंने एक्सप्लेन किया।